Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
और ये नियम है उपासना की, जो कि परमात्मा की, जो समर्थ परमात्मा की उपासना करता है वो उपासक खुद भी समर्थ हो जाता है। और जब खुद समर्थ हो जाता है तो उसको फिर यहां कोई दुख, कोई शोक की प्राप्ति नहीं होती। जैसे समर्थ होने के कारण ईश्वर को कोई सुख दुख की प्राप्ति नहीं, उस समर्थ ईश्वर की उपासना करने वाला उपासक ईश्वर रूप हो जाने पर समर्थ हो जाता है, तब उसको भी कोई सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। भूय सृष्ट्वा, ये परमात्मा क्या इस विश्व जाल को एक ही बार बनाता है? बोले नहीं। भूय सृष्ट्वा संहरति, भूय सृष्ट्वा, भूय संहरति, भूय सृष्ट्वा, भूय संहरति, बार बार रचना करता है, बार बार बनाता है, बार बार संहार करता है। इस बात को अन्य श्रुति ने इस तरह पुष्ट किया है, यथा पूर्वम। उस परमात्मा इस सृष्टि को धाता पूर्वम अकल्पयत, यथापूर्वम अकल्पयत, पहले जिस प्रकार की सृष्टि उसने बनाई उसकी स्मृति सुरक्षित होने के कारण पुनः इसका संहार करने के बाद जब दूसरी बार बनाता है तो उसी तरह बनाता है, उसकी स्मृति अप्रतिहत होती है। जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। परमात्मा की जो स्मृति है वो अप्रतिहत है, अबाधित है, और जीवात्मा की स्मृति प्रतिहता है, बाधित होती है। प्रतियत होने में कारण क्या है? महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्रों में लिखा है कि उसकी जो रितंभरा जो प्रज्ञा है साधक की, जब वो प्रज्ञा रितंभरा हो जाती है तो जन्म कथनता संबोधा, अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथनता संबोधन, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है। जब व्यक्ति अपरिग्रही होता है और उसकी निष्ठा पूर्ण अपरिग्रह में स्थिर हो जाती है तो वो जाति स्मर हो जाता है, वो जन्म कथनता संबोधन, वो उसकी स्मृति अप्रतिहत होती है। हमारी स्मृति क्यों प्रतिहत होती है? क्योंकि हम परिग्रही हैं। हम जिसको भी जो भी देख लेते हैं संसार में वो सबको सापेक्षित रूप में संग्रह कर लेते हैं। ये मुझे चाहिएगा, ये मुझे चाहिएगा, ये मेरे काम में आएगा, ये मेरे लिए है। जब परमात्मा की वस्तु को तुम जीवात्मा संग्रह करने लग जाता है कि मेरे लिए है, मेरी आवश्यकता है, मुझे जरूरत है, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूरत पड़ सकती है, इन सारी कल्पनाओं से संसार के पदार्थों को जब वो परिग्रह करने लग जाता है तो उसकी जो परिग्रह वृत्ति है वही पूर्व स्मृति को अपहत करता है, कुंठित कर देती है, तब उसकी स्मृति बाधित हो जाती है। व्यक्ति कहते हैं महाराज अब तो बहुत मुश्किल हो गया, याद शक्ति चली गई। ये याद शक्ति गई क्यों? महर्षि पतंजलि उत्तर देते हैं, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में संसार के इतने कचरे भर रखे हैं, उन कचरों में उढ़क गया है याद शक्ति, ये प्रतिहत हो गया, बाधित हो गया। प्रसंग में हम दृष्टांत दिया करते हैं, हमको वो स्मृति आ जाती है कि दिल्ली संन्यास आश्रम, हमारा गुरु आश्रम विश्वनाथ संन्यास आश्रम, तो वहां एक महात्मा थी, उनकी आदत थी कि जो कुछ भी दिखे वो उसको अपने कमरे में लाकर सुरक्षित रखे। बाहर कोई प्लास्टिक की थैली देख ले भी तो उसको उठा लिया और कमरे में लाके सुरक्षित रखे। कहीं उनको पीन दिखा तो उसको उठा के लाए और अपने कमरे में रख लिए। कहीं कोई डब्बे देख लिए खाली तो उसको उठा के लाए अपने कमरे में रख लिए। कहीं कपड़े के टुकड़े देख लिया उसको उठाए लाया कमरे में रख लिया। एक तरफ करते करते उसका कमरा ऐसा हो गया कि वो पूरा का पूरा कचरा घर बन गया। हमारे दृष्टि में इतना ढेर। अब उनको कहा जाता था कि अरे तुम ये सब क्यों कमरे में ले जाते हो, क्या जरूरत, जो दिखे तुम उसमें ले जाओ। बोले तुम लोग समझते नहीं हो, हमें कहा करते थे वो, तुम लोग समझते नहीं हो, न जाने कौन सी चीज किस समय किसको काम आ जाए। उनका यही उत्तर था, तुम लोग समझते नहीं हो, न जाने किस समय कौन सी चीज किसको काम आ जाए। हम कहते तुम्हारे काम में आ रहा है कि नहीं। बोले अरे बाबा खाली अपने काम में आवे इतने ही रखना, ये तो मूर्खता है। दूसरों के भी काम में आ जावे उसको भी रखना चाहिए। तब ये होता था कि हम लोगों को जब कभी जो कुछ वस्तु की आवश्यकता पड़ती फिर हम उन्हीं को याद करते थे कि उसके जाओ चेतनानंद के यहां, उसका नाम चेतनानंद गिरी था, जाओ चेतनानंद के वहां मिल जाता है। किसी के कमीज का कोई बटन गिर गया, टूट गया, एक बटन गिर गया, अब खरीदने कहां जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जाओ चेतनानंद वहां वो मिल जाएगा। किसी को सुई चाहिए तो कहां जाओ, धागा चाहिए वहीं, कहीं प्लास्टिक की थैली चाहिए, अब कहां जाएंगे प्लास्टिक की थैली खोजने, तो बोले जाओ चेतनानंद के। तब जब हम कभी कोई चीज खोजते हुए उनके पास जाते थे तब वो फिर हमको सुनाते थे, देखा पहले कहता था ना तू ये सब कचरा क्यों इकट्ठा किया है, आज मांगने आ गया ना, देख तेरे काम में आए कि नहीं, ये ले, दे देते थे। परिणाम ये होता था उनके कमरे में सब भरा हुआ, इतना भरा हुआ था कि वो खुद उनको सोने के लिए भी जगह नहीं बची थी। और जब वो मरे उनका शरीर छूटा, उस कमरे को खाली करने कई दिन लगे, हैरान सब के सब उठा उठा कर आग लगानी पड़ी जमुना के किनारे ले जाकर। हमारा आश्रम जमुना के किनारे है दिल्ली में, तो यही कहते रहे। तो हमारी स्मृति क्यों बाधित होती है, क्यों हमको पूर्व स्मृति नहीं रहती, उसका कारण उत्तर दिया है महर्षि पतंजलि ने, क्योंकि तुम ज्यादा परिग्रही हो, हर वस्तु को अपने भोग्य बनाती और संग्रह करते हो, जो देखा भोग्य बनाया, जो देखा वो इसको भोग्य बना दिया, और इसी भोग्य बनाने की जो वृत्ति है वो जीव सृष्टि कहलाती है। देखो आप लोग गुजराती हो कुछ तो बटाटा बोलते हो ना, आलू, हिंदी में आलू बोलते हैं, गुजराती लोग बटाटा बोलते हो। विचार करो ये बटाटा किसकी सृष्टि है, किसने पैदा की है, जमीन परमात्मा की, बटाटा के बीज परमात्मा का, और बटाटा जो बना वो परमात्मा के, उसी की कृपा से बटाटा तैयार हुआ। और उस परमात्मा की सृष्टि जो बटाटा है तुम उसको खरीद कर अपना बना लिया, तो गोदामों में जितने भी बटाटे सड़ते हैं उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, सड़ते हैं सड़ते हैं, जितनी सड़े होंगे, लेकिन उस गोदाम के इतने सारे बटाटाओं में से तुम आधा किलो बटाटा खरीद के लाकर जब अपना भोग्य बनाते हो तो उसमें से एक बटाटा सड़ता है तो तुम्हें दुख होता है। अब तुम उस बटाटे परमात्मा की सृष्टि के बटाटे को तुम अपने भोग्य के लिए उसको काटोगे, या तो चिप्स बना लोगे या सब्जी बना लोगे या फिर आलू के परौंठे बना लोगे, और क्या क्या बनाते हो, क्या क्या बनाते हो, ये सब जीव सृष्टि। आलू की सब्जी खाना नहीं चाहता बेटा, तो जब उसके सामने आलू की सब्जी आती है रोता है, परंतु आलू के चिप्स खाना चाहता है तो फिर चिप्स नहीं आती है रोता है, चिप्स आता है प्रसन्न होता है, आलू की सब्जी आती है तो दुखी होता है। आलू की टिक्की बनकर आती है, चाट बनकर आता है तो टिक्की खाना चाहने वाला टिक्की देखकर प्रसन्न होता है, चाट खाने चाहने वाला टिक्की देखकर अप्रसन्न होता है। ये सृष्टि सुख दुख का कारण जीव सृष्टि अपनी ही है। आलू तो आलू है, परमात्मा की सृष्टि है। तो परमात्मा की सृष्टि में संतुष्टि हो जाए तो आलू के नाम से जो भी आ जाए, टिक्की आवे, वेफर आवे, चिप्स आवे, परोठे आवे, जो भी खाओ, गांव तो गांव है, उस गांव के माध्यम से बने हुए आटे से जो बनता है वही खाओ। लेकिन व्यक्ति कहता नहीं मैं परोठा खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। व्यक्ति कहता है मैं रोटी खाऊंगा, परोठा नहीं खाऊंगा। व्यक्ति कहता है उस गांव की हलवा बना दो तो खाऊंगा। बोलता है कि मैं गांव की रोटी नहीं खाता, गांव के दलिया खाता हूं। लियो जी, ये क्या है? दलिया किसने बनाई? जीव सृष्टि। और वही अनुकूल और प्रतिकूल होती है। रोटी उसके लिए प्रतिकूल और दलिया अनुकूल, हलवा उसके लिए प्रतिकूल, दलिया अनुकूल, जीव भोग्य। भूय सृष्ट पतयस्तथे सह वो ईसह, ईस माने समर्थ, समर्थ किस अर्थ में? उसकी प्रज्ञा अप्रतिहत है इसीलिए वो समर्थ है। हम असमर्थ हैं किस अर्थ में? कि हमारी प्रज्ञा परिग्रहों के द्वारा प्रतिहत होती है, इसलिए हम पराधीन हैं, असमर्थ हैं। वह फिर पतयः सृष्ट्वा, लोक लोकपाल की सृष्टि करता है। यहां पतयः शब्द का अर्थ होता है क्योंकि वह सभी जगह, क्यों तो वो सर्वव्यापक है और समर्थ है, इसलिए अपनी सभी जगह उपस्थिति से सब शासन कर सकता है। फिर भी उसने शासन करने के लिए, व्यवस्था मिलाने के लिए अपनी समान शक्ति वाले लोकपालों की रचना करके जगत व्यवस्था में उनको नियुक्त करता है। ये वैदिक है। राष्ट्र व्यवस्था में जैसे राष्ट्राध्यक्ष अपने अधिकार शक्ति को प्रदान करके वो अलग अलग जोन में, अलग अलग राज्य में नियुक्त करता है, उससे क्या होती है? उसको व्यवस्था में सुविधा मिलता है। इसी प्रकार से परमात्मा इन सारे सृष्टियों की रचना करता है, उसके बाद सृष्टिपाल लोकपालों की रचना करके वो लोक संचालन के लिए उनको नियुक्त करता है। भूय सृष्ट्वा पतयः तथेस सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा। वो महात्मा उन लोकपालों को सर्वाधिपति, सभी अधिकार प्रदान करता है। तब देख लो, पृथ्वी आदि जितने भी पंचमहाभूत आदि हैं और पंच तन्मात्राएं हैं, पंच इंद्रियां हैं, अंतकरण है, पंच प्राण है, ये सब ईश्वर की सृष्टि है। लेकिन इसके बाद अलग अलग योनियां जो हैं, अलग अलग प्रकार की उद्भिज्य सृष्टि, अलग अलग प्रकार के स्वेदज सृष्टि, अलग अलग प्रकार के पिंडज सृष्टि, अलग अलग प्रकार के अंडज सृष्टि, ये सारी सृष्टि में परमात्मा ने जो पहली सृष्टि करके ब्रह्मा को नियुक्त किया, आगे की सृष्टि फिर वो ब्रह्मा करता है। सर्वाधिपत्यम, ब्रह्मा को उस शक्ति से, वो सामर्थ्य से युक्त कर दिया परमात्मा ने, उस लोकपाल को, ब्रह्मा को, मनुआदियों को, कि तुम भी आगे की सृष्टि तुम करो। भागवत का प्रसंग आप लोगों ने सुना ही है, जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को कुछ भी बोध नहीं हुआ, कुछ ख्याल नहीं रही, मैं कहूं क्या, किस लिए आया हूं, मेरा क्या प्रयोजन है। तब उन्होंने ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तुम तपस्या करो तो सब कुछ ख्याल आ जाएगा। तो क्योंकि ब्रह्मा को क्यों नहीं ख्याल आया पहले, तो क्योंकि पहले कल्प में ब्रह्मा के स्मृति में बहुत परिग्रह थे और उसके चलते उसको स्मृति उद्बोध नहीं हो पा रहा था। तब भगवान की आज्ञा हुई कि तुम तपस्या करो। तब जब ब्रह्मा ने तपस्या की तो वो सब पूर्व जन्म की जो परिग्रह थे, जो स्मृति को प्रतिहत करने वाले थे, वो सब हट गए, तपस्या से छट गए। तपस्या हमेशा शोधन के लिए होता है, तपस्या जीवन को शोधन करने के लिए होता है, तपस्या अंतकरण को शोधन करने के लिए होता है, तपस्या इंद्रियों को शोधन करने के लिए होता है, तपस्या बुद्धि को शोधन करने के लिए होता है। लेकिन हम तपस्या को कष्ट मानते हैं और उसको अपनाते नहीं है। परिणाम क्या होता है, शरीर भी दूषित रह जाता है, अनेक रोगों से युक्त हो जाता है, इंद्रियां भी दूषित रह जाती है, विषय आसक्त हो जाती है, अंतकरण भी दूषित हो जाता है, राग द्वेष से युक्त हो जाता है, बुद्धि भी परिग्रहों से ग्रसित हो जाती है, वैषम्य नैर्गिण्य से युक्त होती है। बुद्धि का दोष यही है कि वैषम्य नैर्गिण्य, ये मेरा ये तेरा है, ये वैषम्य नैर्गिण्य। मनुष्य ये चाहता है कि मुझे वो मिले, अपने आप मिले, परिश्रम कम करना पड़े और उपलब्धि ज्यादा हो, और मुझे जो मिला हुआ है वो और के पास न जावे, उसका मालिक और न होवे, ये वैषम्य नैर्गिण्य दोष है, ये बुद्धि का। ये दोष कब हटेगा, जब तपस्या करता है। जब सोने को तपाया जाता है तो उसमें रहने वाले विकार हट जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन को तपाया जाता है तो जीवन के सारी विकार हट जाती हैं। केवल जीवन के नहीं, तपस्या से इंद्रियों के, प्राण के, शरीर के, अंतकरण के, बुद्धि के, ये सारी विकार हट जाते हैं। तो तपस्या मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं है। शास्त्र ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने तपस्या का जो विधान किया है, ये मनुष्य को ही लक्ष्य करके तपस्या का विधान किया है। परंतु जीवात्मा मनुष्य इतना चालाक हो गया है कि उसमें तपस्या को तो अपनाना नहीं चाहता है। परिणाम उसके ही खुद की जिंदगी बिगड़ जाती है। तप करो, जब आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा ने तप की, तो तप का फल यह हुआ कि उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसमें पूर्व कल्प के जितने भी परिग्रह थे वो सब हटने गए, हटते गए। तब फिर वेद राशि उनकी स्मृति में अपने आप प्रकट हो गई। वेद राशि उनकी स्मृति में अपने आप प्रकट हो गई। तब उनको सारा बोध हो गया कि अरे सृष्टि मुझे करना है, किस तरह करना है, सब कुछ अपने आप ही स्मृति में आ गया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रेणोति तस्मै तम्ह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणम् अहम् प्रबद्धे। वेद राशि सब उसको प्राप्त हो गया, तब सारी स्मृति आ गई। तब जैसे पूर्व कल्प में थे उसी तरह की उसने सृष्टि की। इस समय जो उद्भिज्य सृष्टि है, वनस्पति आदि जितने प्रकार हैं, वो कोई नई सृष्टि नहीं है। पूर्व कल्प में भी ये थे, इस कल्प में है। इस समय जितने भी अंडज सृष्टि है वो पूर्व कल्प में थे, अभी भी है, दूसरे कल्प में भी होंगे। जितने भी पिंडज हैं वो कोई नए नहीं है, पहले थे, अभी हैं, फिर दूसरे कल्प में भी होंगे। क्योंकि इसकी जो विधान करने वाला विधान है वह है वेद। वेद राशि जिसकी स्मृति में स्फुरित होती है उसमें वो सारी प्रतिमा, वो सारी प्रज्ञा अप्रतिहत होती है। तब वो भूयश्चान्ति, बार बार इसी प्रकार की सृष्टि वह करता रहता है। सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा, इसका अर्थ दूसरा किया है सभी का आधिपत्य करता है वो महात्मा, क्योंकि वो महात्मा है इसलिए वो सबका आधिपत्य करता है, यानी सभी को अपने अधीन रखता है। देखो परमात्मा की बड़ी विचित्र सृष्टि की व्यवस्था है, संचालन की प्रक्रिया है, अलग अलग लोक और लोकपाल के निर्माण करके अलग अलग लोकपालों को अपनी शक्ति प्रदान करके उसकी सृष्टि करने के लिए वो आज्ञा करता है, जाओ तुम अपने ढंग से सृष्टि करो, अपने लोक का संचालन करो, सारे अधिकार से संपन्न करने के बाद उसको फिर अपने अधीन में लगता है रखता है। परमात्मा की विशेषता देखो, उनको सारा अधिकार संपन्न भी करके दे देता है, शक्ति संपन्न भी करके सारा अधिकार संपन्न करके देता है, कहता है तुम स्वतंत्र सृष्टि करो, फिर बाद में उनको अपने अधीन भी रखता है। कहते हैं ना कि ये तिजोरी तेरी है, चाबी भी तेरी है, बस खाली खोलना नहीं बस उसका मालिक भी बना दिया, तिजोरी भी तेरी है, चाबी भी तेरी है, तू ही रख चाबी, तिजोरी भी तू ही रख, लेकिन इतना ही करना बस, खोलते समय मुझे बुला लेना, खबरदार, फिर मुझे बुलाए बिना तूने खोल ली तो उसको स्वतंत्रता भी दी और अपने मालिकता भी, मालिकपना भी सुरक्षित रख लिया। यही तो यही श्रुति का यही तात्पर्य है। एकेकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्ते स देवाः, भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथे सः, सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। महात्मा इस अर्थ में है कि वो सब कुछ दे देता है, सब बांट देता है, सभी को अधिकार संपन्न कर देता है, और इस अर्थ में है कि वो सबको अपने नियंत्रण में भी रखता है। सर्वाधिशा ऊर्धम अधश्चतीर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वद् अनड्वान्। रहता कहां है वो? रहता है वो अपने धाम में, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीयहि। अपने धाम में रहता है, अपने ठाव में रहता है, अपने गांव में रहता है, उसको जहां रहना है वही रहता है। तब फिर उसको सर्वव्यापक किस तरह है? तो बोले उसकी सर्वव्यापकता उसकी प्रकाश के रूप में उपस्थिति ही उसकी सर्वव्यापकता है। जैसे सूर्य अंतरिक्ष मंडल में सूर्य मंडल में रहता है, लेकिन उसके प्रकाश, उसमें से निकलने वाले प्रकाश सब जगह पहुंचा हुआ है, इसलिए अपने मंडल में रहते हुए भी वो सब जगह उसकी उपस्थिति है। परमात्मा की उपस्थिति व्यापकता, उसकी प्रकाशता, उसकी सत्ता, उसकी चित्ता को लेकर उसकी व्यापकता है। सर्वादिशा उसी के द्वारा सृष्टि किए हुए सभी दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध और अध, सारी दिशाएं, अधश्च ऊर्धम तीर्यं, आश्चर्य की बात है कि वो सभी को प्रकाशित करता है। प्रकाशयन् भ्राजते राजते, सभी को प्रकाशित करता हुआ वो खुद विराजमान है। उदाहरण दिया, यद्वद् अनड्वान्, सूर्य भास्कर, जैसे सूर्य अपने मंडल में रहते हुए अपने प्रकाश से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध आधा सभी को प्रकाशित करता है, उसी तरह परमात्मा सर्वत्र प्रकाश के रूप में अपनी उपस्थिति रखता है। एवं स देवो भगवान वरेण्यः, एवं इस तरह वह देव भगवान है, सर्वैश्वर्य संपन्न है। भगवान शब्द का अर्थ सर्वैश्वर्य संपन्न है, तो वरेण्य है, क्योंकि सर्वैश्वर्य संपन्न है इसीलिए वह वरेण्य है, क्योंकि प्रकाश स्वरूप है इसीलिए वह वरेण्य है। वरेण्य माने वरणीय, संभजनीय, वरेण्यम संभजनीयम, उसी के वजन करो, उसी के शरण ग्रहण करो, उसी को प्राप्त करो, वरण माने ग्रहण करना, उसी अर्थ में वर शब्द हो गया। योनिस्वाभावादितिष्ठत्ते कह, हर कारण के स्वभाव से उनके स्वतंत्र स्वभाव को स्थापित करते हुए अधितिष्ठति एकः, उसका अधिष्ठान बनकर। अधिष्ठान शब्द का दो अर्थ है, एक आधार भी होता है, अधिष्ठान शब्द का दूसरा अर्थ होता है नियमक। यह पृथिव्यां तिष्ठत पृथ्वी यस्य शरीरम पृथिवीयम् न विदुः, जो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, लेकिन जो पृथ्वी को जानता है और सारे पृथ्वी का वह यमन करता है, शासन करता है, वही अंतर्यामी। छांदोग्य उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण का जो प्रसंग है उसी को लेकर यहां ये कहा, योनिस्वाभावादि तिष्ठति एक, वो एक सन अपि। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।